हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्नव और धृति की फेयरवेल पार्टी अटेंड करने के बाद दोपहर तक वापस लौट आए थे। धृति के जाने पर वहां काम करने वाले कारीगर कुछ उदास थे, पर अर्नव और उसके लिए खुश भी थे। अर्नव को खास शुक्रिया भी कहा गया था, क्योंकि उसके आने से उनके हालात काफी सुधर गए थे और उनकी कंपनी बंद होने से भी बच गई थी। कुछ देर आराम के बाद वे अपनी पैकिंग में लग गए। 8 बजे की फ्लाइट से मृणाल और कुश के साथ वे मुंबई के लिए निकले। धृति कुश के साथ मन बहलाती रही, पर अजीब से एहसासों ने उसके मन को घेरा हुआ था। एक रात अचानक सबकी जिंदगी से गायब हो गई, और अब अचानक वापस वहां जाना, सबका सामना करना, सोचकर ही बहुत अजीब लग रहा था उसे, और काफी घबरा भी रही थी वो। रात के करीब 1 बज रहे थे जब वे चारों रायजादा मेंशन पहुंचे। कबीर ने उनके लिए कार भेजी थी। कुश तो रास्ते में ही सो गया था। इस वक्त मृणाल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और कुश उसके कंधे पर सर रखे सो रहा था। कार से बाहर निकलने के बाद धृति कुछ पल तक खामोशी से उस मेंशन को देखती रही। उसके साथ खड़ा अर्नव कुछ पल बस उसे देखता रहा, फिर उसने धृति की हथेली को थाम लिया। कब तक यहां खड़ी रहोगी? कुछ नहीं बदला है यहां, सब वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी, और अब तुम्हें यहीं रहना है तो बाद में बहुत मौके मिलेंगे, तुम्हें आराम से देखती रहना। अभी अंदर चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। धृति जो मेंशन को एकटक देखे जा रही थी, अर्नव की बातें सुनकर उसने निगाहें उसकी ओर घुमाई। उसका घबराहट भरा चेहरा और भीगी निगाहें देखकर अर्नव ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया और उसकी भीगी पलकों को अपने अंगूठे से पोंछते हुए बेहद नरम लहजे में बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया है धृति, इसलिए तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आज तुम अपने घर ही लौट रही हो, तो इतना सोचना और हिचकिचाना क्यों है? मैं हूं तुम्हारे साथ। अर्नव जैसे उसे विश्वास दिला रहा था कि वो उसके साथ है, तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धृति ने सर हिलाया और अर्नव की हथेली थामे। अभी उसने पहला कदम बढ़ाया ही था कि वो बड़ा सा दरवाजा खुल गया और सामने खड़ी लोगों को देखकर एक बार फिर धृति के कदम ठिठक गए और निगाहें झुक गईं। अर्नव उसकी हथेली को कसकर थामते हुए आगे बढ़ गया। वे दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि शीला आरती की थाल लेकर वहां उपस्थित हो गईं। पहले दादी ने दोनों की नज़र उतारी, फिर शालिनी जी ने आरती उतारते हुए उनका स्वागत किया। उसके बाद सब अंदर चले आए। अर्नव की हथेली को कसकर जकड़े खड़ी धृति अब भी निगाहें झुकाई खड़ी थी, जब दादाजी उसके पास चले आए और नाराजगी भरे स्वर में बोले, बेटा, हमने आपको कहा था ना कि कोई भी बात हो तो बेझिझक हमें बताइएगा। पूछा भी था कि क्या अर्नव ने आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे शादी की है, क्या आप उनके साथ खुश नहीं? फिर तब आपने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था, या आपने हमें अपना माना ही नहीं था इसलिए अपने मन की बात हमें नहीं बता सकी? सालों से ये बात उनके मन में शूल बनकर चुभ रही थी, और आज मौका मिलने पर उन्होंने धृति से सवाल कर लिया था। उनकी बात सुनकर धृति का मन आत्मग्लानी से भर गया। उसने नजरें झुकाए हुए ही धीमे स्वर में जवाब दिया, ऐसा नहीं है दादाजी, आप सबके कारण ही मैं इतने वक्त तक रुक गई थी, वरना तो मैं कब की चली गई होती। आप सबने मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया कि मैं उसका मोह करने लगी, पर साथ ही मन में एक डर भी था जिसके कारण मैं आपको कुछ नहीं बता सकी। कैसा डर बेटा? अर्नव ने गलत किया था तो आपको हमें बताना चाहिए था, हम उन्हें सजा देते। अगर आपको उनके साथ नहीं रहना था तो बताती हमें, हम आपको अपने साथ ले जाते। अर्नव ने गुनाह किया था तो उन्हें सजा देते, पर आप तो खुद अपना घर परिवार छोड़कर चली गईं। दादाजी अब भी नाराज थे। शायद धृति के घर छोड़कर जाने वाले फैसले ने उन्हें बेहद निराश व दुखी किया था, जिसका एहसास धृति को भी था। उनके उस सवाल पर उसने निगाहें उठाकर नम आंखों से उन्हें देखा और भारी गले से बोली, कैसे बताती मैं आपको सच? आप सब इतना विश्वास करते थे उन पर, मैं उस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि आपका दिल दुखे या मेरे कारण इस परिवार में दरार आए, रिश्तों में दूरियां आए और कड़वाहट खुले। फिर पूरी गलती उनकी भी नहीं थी, मैं उन्हें भी पूरी तरह से गुनाहगार नहीं मान पा रही थी, तो आपको कैसे उन्हें गलत समझने देती? उनके भाई के साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने अपने भाई के लिए जो किया वो पूरी तरह से गलत नहीं था। हाँ, किस्मत ने उनके गुस्से और नफरत को झेलने के लिए गलत इंसान को चुन लिया, पर यहां भी पूरी तरह से वो गलत नहीं थे। उन्होंने उसी को सच माना जो देखा, सुना और जाना, और उस हिसाब से मैं ही गलत थी, और उन्होंने मेरे साथ वही किया जो उनके हिसाब से मैंने उनके भाई के साथ किया था। उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि गुनाहगार ना होते हुए मुझे सजा मिली और गलती ना होते हुए वो गलत बन गए, उसके लिए मैं उन्हें भी दोष नहीं देती। समय और हालात ही तब खराब थे। अगर आप अर्नव को अपना दोषी नहीं मानती थी तो घर छोड़कर क्यों गई बेटा? ये सवाल दादी ने किया था, जिस पर धृति कुछ पल खामोश रह गई। फिर उसने एक नजर अर्णव को देखा, उसके बाद निगाहें झुकाते हुए बोली, मैं इन्हें पूरी तरह से गलत नहीं कह रही, पर कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर पा रही थी, उन्हें पूरी तरह से सही या गलत नहीं मान पा रही थी, उस पर खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं उनके भाई की मौत की जिम्मेदार मैं भी थी। मैं चाहकर भी ये नहीं भूल पा रही थी कि मेरी दीदी ने वो सब किया था। उन्होंने एक मासूम को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया था। अगर मैंने उनसे अपनी पहचान नहीं बदली होती तो शायद वो सब नहीं होता। इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं दोषी थी। मैं खुद को उस आत्मग्लानी से मुक्त नहीं करवा पा रही थी और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि डरती थी कि अगर आप सबको सारी सच्चाई पता चल गई और पता चल गया कि मेरे कारण आप सबने आकाश को खो दिया, तो कहीं आप सबका प्यार नफरत में न बदल जाए। मैं जब खुद को माफ नहीं कर पा रही थी तो आप सबसे माफी की उम्मीद कैसे रखती। इसलिए बिना किसी को कुछ बताए आप सबकी जिंदगी से चली गई थी। सोचा था अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगी। आप खुद को दोषी कैसे ठहरा सकती हैं बेटा? अभी आपने खुद कहा था कि अर्णव ने जो किया वो गलतफहमी के कारण किया, इसलिए आप उन्हें दोषी नहीं मान सकी। फिर आपने भी तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, फिर आप दोषी कैसे हुईं? हम भला आपसे नफरत क्यों करते जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं? हाँ, आपसे एक गलती हुई, पर वो गलती अनजाने में हुई, और अनजाने में हुई भूल के लिए तो भगवान भी माफी दे देते हैं, सजा नहीं देते, फिर कैसा प्रायश्चित? दादाजी के इस जवाब ने धृति को निशब्द कर दिया। उस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी शायद शब्दों में बयां कर पाना और अपने लिए उस फैसले की वजह सबको समझा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वो खामोश ही रही। कुछ पल वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा, फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए शालिनी किसी सौम्य सी आवाज आई, जो होना था जो गया, पुरानी बातों को याद करके दुखी होने का अब कोई मतलब नहीं, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाइए। हम सबको आपसे कोई शिकायत नहीं, इसलिए दोबारा ऐसा कोई कदम मत उठाइए। जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो है उन्हें बिखरने नहीं दे सकते। आप हमारी बहू हैं और अब से बस एक यही हकीकत याद रखनी है आपको।
शालिनी जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया और उसे अपने सीने से लगाते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उनके ममता भरे स्पर्श को पाकर धृति उनके सीने से लगी सिसकने लगी। सालों से मन में भरा गुबार जब बाहर निकला तो दिल काफी हल्का महसूस होने लगा। जो हुआ उसे भुलाकर सबने एक फ्रेश स्टार्ट करने का फैसला किया था। दादा दादी, भावेश जी, शालिनी जी, अंजलि जी सब धृति से मिले। सबने उसे प्यार किया और समझाया भी। अंजलि जी के पति राजेश जी से तो वो आज पहली बार मिली थीं। धृति ने मृणाल और कुश से भी सबको मिलवाया। एक तरफ खड़ा अर्णव बस खामोशी से सबको देख रहा था, शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मॉम, आपकी बात का मान रखते हुए मैंने बीते 3 सालों में आप सबसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। आपने कहा था कि आपको अपना चेहरा उस दिन दिखाऊं जब आपकी बहू को वापस आपके पास ले आऊं, तो आज धृति को वापस ले आया हूं। उसने मुझे माफ भी कर दिया है, तो क्या अब आप सब मुझे माफ करके मेरी सजा को खत्म कर सकते हैं? टू बी कंटिन्यूड।